नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने हिमालय संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त करेगी सरकार। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों को मिली नई पहचान। और राष्ट्रीय लोक अदालत में आज प्रदेश भर में 111,000 से अधिक मामलों का हुआ निपटारा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज 18वें ब्रिक्स सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता निर्माण के लिए भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई है और ये शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही है। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को सफल बनाने में सक्रिय योगदान और समर्थन के लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।
प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में बहुमूल्य योगदान, रचनात्मक भावना और प्रतिबद्धता के लिए नेताओं के प्रति आभार जताया। ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने हिमालय संरक्षण को सरकारी प्रयासों तक सीमित न रखकर इसे जन आंदोलन का स्वरूप देने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि हिमालय संरक्षण के साथ ही राष्ट्र निर्माण के संकल्प को मजबूती मिलेगी। धर्मशाला में आज एक संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि हिमालय का संरक्षण केवल पर्यावरण संरक्षण का विषय नहीं, बल्कि मानव जीवन, क्षेत्रीय सुरक्षा और संपूर्ण समाज के भविष्य से जुड़ा विषय है।
हिमालयस को लेकर के हमारी चिंता है। हम खुद समझ सकते हैं कि क्लाइमेट कंट्रोल कितना जरूरी है। आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हमें बार बार अलार्म कर रही है। तो अभी हमने नेपाल की त्रासदी भी देखी है, इससे पहले पिछले गत वर्षों में हिमाचल में भी बहुत कुछ हुआ, केदारनाथ की त्रासदी हमने देखी है। कहीं ना कहीं जब हिमालय से छेड़छाड़ होती है तो जल स्रोत जो हमारे जीवन रेखा है वो प्रलय का रूप धारण कर लेते हैं। ये जरूरी है कि इस प्रकार की जो संगठन है विशेष करके इसके बारे में सोचे। हमारी जो जीव विविधता है या दूसरी है, जो हिमालय की किस प्रकार से संरक्षण करना है, जल स्रोतों को कैसे बचाना है, ये सभी चिंता का विषय है।
प्रधानमंत्री के एक पेड़ माँ के नाम अभियान का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में युवाओं और आम नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। संगोष्ठी के दौरान विभिन्न विषयों पर प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि शिक्षा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाती है। वे आज सोलन जिले में एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। रोहित ठाकुर ने युवाओं से अपने कौशल के माध्यम से देश के लिए कुछ नया करने, रोजगार के अवसर सृजित करने और विकास में अपना योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने और उन्हें रोजगार के सीधे अवसर उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दीक्षांत समारोह में कुल 1,047 विद्यार्थियों को उपाधि सहित 4 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि नशे के कारोबार के खिलाफ सरकार की निर्णायक जंग जारी है और नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। उन्होंने आज शिमला में बताया कि सरकार की कार्रवाई केवल नशा तस्करों की गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं है। सरकार का लक्ष्य नशे के पूरे नेटवर्क, उसकी आर्थिक व्यवस्था और इससे अर्जित अवैध संपत्ति को पूरी तरह ध्वस्त करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस दिशा में पूरी स्वतंत्रता दी गई है और सरकार उन्हें हर संभव सहयोग दे रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल देवभूमि है और इसे नशे की गिरफ्त में फंसाने के प्रयासों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने एआई सहित नई प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने पर बल दिया है। जापान के टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में उपमिशन प्रमुख आर मधुसूदन से एक भेंट के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को जापान की तकनीकी दक्षता, कौशल विकास और नवाचार से जोड़ने की अपार संभावनाएं हैं। धर्माणी ने कहा कि इस पहल से विद्यार्थियों और युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, प्रशिक्षण व रोजगार नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। शेष समाचारों में, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि ऊना जिले के हरोली क्षेत्र को खेलों के हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। हरोली में आज एक खेल प्रतियोगिता के समापन पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है और इंडोर स्टेडियम भी बनाए जा रहे हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि हरोली महाविद्यालय के दूसरे भवन का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों को नई पहचान व नई दिशा मिली है। मंडी जिले के बालीचौकी में आज खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया जैसे अभियानों के माध्यम से प्रतिभावान खिलाड़ियों को जमीनी स्तर से आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं और देश में खेल संस्कृति को मजबूत करने का काम हुआ है। जयराम ठाकुर ने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किया है।
मैं आप सबसे इस बात के लिए खासतौर से कह रहा हूँ कि आगे बढ़ो। अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत ज्यादा है। अपॉर्चुनिटी अवेल करने में अगर कोई कमी रहेगी तो उसमें और किसी का दोष नहीं, वो हमारा ही दोष है। और आज की इस खेलकूद प्रतियोगिता में मैं बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ। आप खेल भावना के साथ खेलेंगे ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और मैं ये भी कहूंगा कि आप निश्चित रूप से पढ़ाई के क्षेत्र में भी अच्छा करें, खेलकूद के प्रतियोगिता में भी अच्छा करें। जो बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा होता है वो पढ़ाई में भी अच्छा होता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है।
प्रदेश के सभी न्यायालयों में प्रीट लिटिगेशन और लंबित मामलों के लिए आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों में विभिन्न मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। शिमला के जिला व सत्र न्यायाधीश रणजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि आज 145 बेंचों के समक्ष 1,46,825 मामले उठाए गए, जिनमें से 1,11,219 मामलों का निपटारा किया गया है। शिमला में कमला नेहरू अस्पताल को आईजीएमसी शिफ्ट करने के मामले में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति 15 सितंबर को सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करेगी। समिति के पदाधिकारियों ने शिमला में कहा कि रोबोटिक सर्जरी की आड़ में सरकार इस ऐतिहासिक अस्पताल को नष्ट करने पर तुली हुई है। समिति के सचिव फालमा चौहान ने बताया कि कमला नेहरू अस्पताल को बचाने के लिए प्रदेश भर में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसे जनता का भरपूर समर्थन मिला है।
हम लोग जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, 1,00,000 से ज्यादा सिग्नेचर जो अभी तक हम लोगों ने करवाए हैं और 15 सितंबर को हम ये जो सिग्नेचर है ये हम प्रदेश की सरकार को जो है सबमिट करेंगे और उसके साथ साथ हमारा जो मेमोरेंडम होगा उस दिन हम लोग सरकार को मिलेंगे। लोगों से, शिमला की जनता से ये अपील करते हैं कि 15 सितंबर को आप इस कमला नेहरू अस्पताल को बचाने के लिए भारी मात्रा में इस मुहिम में जुड़े।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने हिमालय संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त करेगी सरकार। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों को मिली नई पहचान और राष्ट्रीय लोक अदालत में आज प्रदेश भर में 1,11,000 से अधिक मामलों का हुआ निपटारा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।